ओम शांति, गुड मॉर्निंग। और सभी का स्वागत है सेकेंड डे राज ऋषि रिट्रीट में। हम ये रिट्रीट स्टार्ट करेंगे एक बाप दादा की ड्रिल से, और ऐसे ही देखेंगे जैसे बाप दादा जब दृष्टि देते हैं तो हम दृष्टि को कैच करेंगे। तो ये बाप दादा थे और हम सब ने उनकी दृष्टि ली। तो रिट्रीट स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा हमने जो कल समझानी दी थी एक बार हम उसको देख लेंगे, ताकि ये सबके अंदर सेट हो जाए कि हम किस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबको समझ आए कि कैसे हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। ये ईगो बेस्ड एफर्ट है यानी देह अभिमान के आधार पर पुरुषार्थ है या फिर ये सोल पुरुषार्थ कर रहा है। एक बार आपको वो फिर से वो व्हाइट बोर्ड दिखा देंगे, क्योंकि अगर देवान के आधार पर पुरुषार्थ है तो वो काम नहीं करेगा। राइट, ये दिख रहा है सबको? तो कल हमने इस बात पे चर्चा की थी कि पहला स्टेप है जिसको हम इन तीनों प्रोसेस को हम अंग्रेजी में स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस बोलते हैं, यानी आध्यात्मिक पारगमन। तो जो रियल पुरुषार्थ है वो ये है, थर्ड स्टेप का पुरुषार्थ। वो स्टेप वन या स्टेप टू का पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि स्टेप वन स्टेप टू ये भक्ति में भी हम करते आए हैं, भक्ति मार्ग में भी हमने ये किया है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। हैरी, सब अपना अपना नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हैरी विद्यार्थी बनता है, ठीक है, देहबान है, फिर से देहबान का ही पार्ट आता है, फिर स्टूडेंट हैरी, यानी ये भी देह अभिमान, हाँ, स्टूडेंट हैरी सोल को देखने लगता है, समझने लगता है, ज्ञान को, आत्मा को देखता है, आत्मा को देखकर योग लगाता है। तो स्टूडेंट हैरी देख रहा है, और तीसरे स्टेप पे सोल जागृत होता है। और जब सोल जागृत होता है तो सोल के लिए ये पूरी जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये स्थूल दुनिया है, ये छोटी हो जाती है, हैरी भी छोटा हो जाता है, उसको हैरी एक पार्ट की तरह नजर आता है, कोई उसका महत्व नहीं होता है उस समय। इतने 84 जन्मों के पार्ट में एक पार्ट हैरी भी है, कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है। तो सोल को बड़ा नक्शा नजर आता है कि मैं कहाँ का हूँ, किसका हूँ, और वो स्थूल दुनिया केवल और केवल एक अभिनय है। तो ये हमारे को पुरुषार्थ करना है स्टेप थ्री का, राइट। तो अभी ज्यादातर जो है हमारा समय ये स्टेप टू में जाता है, यानी विद्यार्थी हैरी जो है सोल को देख रहा है, उसमें भी प्राप्तियां हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन सोल जागृत नहीं हुआ है। ये जो हम बात करते हैं अशरीरीपन का, और बाबा जो मुरलियों में बड़ी बड़ी प्राप्तियों की बात करते हैं, ये सोल के जागृत होने की प्राप्ति है। मैजिक ये करता है, मैजिक करता है थर्ड स्टेप, जादू ये थर्ड स्टेप करता है। नहीं तो जब तक हम स्टेप टू पर हैं, यूजुअली क्या कहते हैं, बेंची पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, अभी भी थोड़ा गुस्सा आता है, अभी भी थोड़ा सा खाने की हबच होती है, अभी भी ये है वो है वो, इसलिए क्योंकि ईगो इन सबको परे नहीं कर सकता है। अल्पकाल के लिए थोड़ा बहुत आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन इन संस्कारों को, कड़े संस्कारों को हटाने के लिए सोल को जागृत होना होता है। हम यहाँ रोकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना चाहेगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं, हैंड रेस कीजिएगा, नहीं तो क्लैश हो जाती है आवाजें, या आप टाइप भी कर सकते हैं। आप कैमरे में आएंगे तो हमारे को आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। जो जो आ सकते हैं वो जरूर आए। किसी का कोई सवाल? कल का ये क्लियर है आपको? तो कड़े संस्कार को निकालना है तो सोल जागृत होना होता है। सोल जागृत होता है तो बड़ा नक्शा दिखता है उसे। देखिए, हम जब स्कूल में थे ना, तो एक हम टीचर्स ऐसा कहती थी, कई बार हमको लगता है कि अगर हम कोई सवाल पूछे वो कोई सिली सवाल या बेतुका सवाल तो नहीं है, तो हमारे टीचर क्या बोलते थे कि आज आपको हाथ उठाने में वो अगर सिली सवाल बेतुका सवाल लग रहा है, अगर आप वो आज नहीं पूछेंगे तो जीवन भर आप सिली रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है जो भी सिली या बेतुका सवाल भी हो, ऐसा लगता हो, जो ऐसा तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा भी लगता हो तो पूछ लेना चाहिए, ताकि हम जीवन भर बेतुके ना रह जाए। किसी को भी कुछ पूछना हो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि देह अभिमान युक्त पुरुषार्थ है या सोल बेस्ड एफर्ट है? सबको क्लियर है? आप चैट पे जवाब दीजिए प्लीज। पूनम बहन का एक सवाल है, अंजुल बहन को क्लियर है जी? हाँ जी पूनम बहन बात
हाँ
कीजिए।
दीदी, कभी कभी ऐसा बोला जाता है ना कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आप ये समझिए कि सोल बॉडी को खाना खिला रही है। तो उस समय आप जो जो अभी आप बात कर रहे थे कि सोल जागृत होने की, तो ये ऐसा ही सोचना है हमें?
वहां पे हम ज्ञान यूज करेंगे, वहां पर हम ज्ञान यूज करके कि एज अ ट्रस्टी हम इस शरीर को खाना खिला रहे हैं। देखिए मुझे, मैं जो इनसाइड हूं, मुझे तो हवा की भी जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। एज अ ट्रस्टी हम इस शरीर को बाबा का शरीर समझते हैं, वही खिलाएंगे और उतना ही खिलाएंगे जितना इसको जरूरत है, इसको पर्याप्त है। तो हम ऐसा समझकर जब हम ज्ञान को अप्लाई करके खाते हैं तो तब नहीं होगा। और ये जो हम बोल रहे हैं ये एफर्ट, ये आप जब बैठ के करें तब इसको करें प्रैक्टिस, बाकी समय में ये अपने आप काम करेगा, बाकी समय में ज्ञान यूज करके आइए। लेकिन बैठते टाइम सोल जागृत है या नहीं ये थोड़ा चेकिंग कीजिएगा। हम उस बारे में और भी बताएंगे, और भी स्पष्टता होगी, लेकिन शुरू के लिए आप ऐसे कीजिएगा। एक सवाल भी आया है, हाँ बोलिए उमा बहन। पूनम बहन आपको क्लियर है, आप बता सकते हैं, बोलिए उमा बहन।
ओम शांति।
ओम
सोल
शांति।
जागृत होता है परंतु ये स्थिति ज्यादा टाइम नहीं रहती, फिर नाटक में आती है तो माया आती है और फिर स्थिति बिगड़ती है, फिर ये स्थिति आने में देर लगती है, वो खेल चलता रहता है।
जी बहुत ही स्लिपरी स्थिति है, बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। आप ठीक कह रहे हैं, ये आती है स्थिति, लेकिन फिर से हम आ जाते हैं, लेकिन फिर से हमको ट्राई करना है, सोल जागृत करना, फिर से ट्राई करना है। ये बहुत बड़ा मैजिक लाता है। मैजिक जब हम बात करते हैं तो सोल जागृति की, 8 घंटा बैठ के सोल को देखते रहे वो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ यहाँ पर सोल जागृत नहीं हुआ तो आपका किया हुआ सारा कुछ फेल हो जाता है, क्योंकि बाबा आए हैं हमें जागृत करने के लिए। बाकी सब हमने भक्ति मार्ग में भी किया है, अब ये है कि हम असली प्रभु को जानकर करते हैं, लेकिन भक्ति का कोई एलिमेंट ना हो यहाँ पर। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर से हमको वही करना है। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता है उमा बहन, क्या नहीं हो सकता प्रैक्टिस से? बाबा भी कई बार बोलते हैं प्रैक्टिस से बहुत कुछ हो सकता है। तो जो 2500 साल की उल्टी स्थिति है इसको ठीक करने में थोड़ा प्रोसेस लगता है, लेकिन आप चालू हो जाते हैं तो वो भी बहुत मुबारक की बात है। हम चालू हो जाते हैं तो फिर ऊपर चलते रहते हैं। ठीक है उमा बहन, और राम के साथ रहिए हर समय, तो बार बार स्थिति में आना भी आसान हो जाएगा। राम से के टास्क से, उसकी उनकी जॉब से थोड़ा सा दूसरी तरफ पलटी मारेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है फिर से आने में, लेकिन डटे रहिए इस मार्ग पर। उमा बहन ठीक है, आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं या बता सकते हैं। सुमन बहन का हैंड रेज है और उन्होंने ये भी पूछा है कैसे एक्सेलेंस होना चाहिए स्टेप 3 में, एक्सेलेंस होने के लिए प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस में आना है और ये प्रैक्टिस ही हमारे को परफेक्ट बनाएगी। बोलिए सुमन बहन, यही सवाल था या और भी कुछ आप पूछना चाहेंगे?
दीदी, और भी है कि हमारे सेंटर में, जैसे मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो एक सिस्टर ने मीटिंग रखी, हमारी दीदी ने मीटिंग रखी कि एक सिस्टर आपसे बात करेगी। तो हमने सब लोग आए हम वहाँ पे, तो उन्होंने वो काफी छोटी उम्र की थी और उन्होंने कहा कि कौन कौन अपनी अभ्यक्त स्थिति बनाना चाहता है। तो सबने हैंड रेज किया कि यस वी वॉन्ट। तो कहते हैं कि ठीक है, मैंने अपनी बनाई है, मैं आप लोगों की भी हेल्प करूंगी। तो दीदी ने भी सेंटर में बोला कि ठीक है, इनकी हेल्प लीजिए। तो उसने कहा कि 4 दिन आपको 4 बजे बैठना है शाम को, घर में कमरे में अकेले में, और 8 बजे तक बैठना है लगातार। तो हम बैठे दीदी, फर्स्ट डे तो बैठे। अब उसने क्या किया उस 4 दिन में कि बाबा की अव्यक्त महावाक्य लगा दिए, बदल बदल के, बदल कभी पिक्चर लगा दे बाबा के परम धाम की, जो विजुअल पिक्चर्स हैं वो लगा दे, कभी ड्रिल लगा दे, कभी कुछ लगा दे। तो उसने 8 घंटे, और हम दीदी किसी की वीडियोस देख रहे थे कि उनकी स्थिति कैसी है और मेरी कैसी है। तो मेरी तो कभी बनती, कभी गिरती, कभी कुछ, कभी तो मैं पहुंचती, कभी तो मेरे को कुछ। तो फिर मैं देखती कि वो 4-4 घंटे लोगों की गर्दन पूरी ऊपर तक, वीडियो में मैं देख रही थी कि जो और लेट ग्रुप में बैठी थी सिस्टर्स उन, मतलब मैंने सोच रही थी क्या ये बाकी 4 घंटे गर्दन ऊपर करके बैठे हैं, परम धाम को ही देख रहे हैं। तो मेरे को बड़ा
सुमन बहन, हाँ अब इसको थोड़ा सा हम कट शॉर्ट करेंगे।
हाँ जी, हाँ जी,
ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे।
हाँ, विस्तार
आपका सवाल जो भी हो, वो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा यहाँ पर सोल जागृति का पुरुषार्थ है और हम उस पर ध्यान देंगे और हमारी पारस बुद्धि हम यूज करेंगे। पारस बुद्धि यूज करके हम ट्रुथ को देखेंगे और कोई भी आपको संस्कारों को हटाना हो या कुछ करना हो हम इसी के द्वारा करते हैं। ठीक है ना सुमन भाई?
हाँ जी, ठीक है दीदी, ठीक।
गीता बहन का बोलिए। गीता बहन,
हाँ दीदी, मेरा भी कुछ सिमिलर सा ही क्वेश्चन है कि जो सोल जागृत करने वाली स्टेट है, या यूं कहें कि अवेयरनेस ऑफ सोल, या वी आर इन कॉन्शियसनेस ऑफ द अवेयरनेस ऑफ सोल, तो वो वाली जो स्थिति होती है, कुड यू बी लिटिल मोर क्लियर कि उस अवेयरनेस में जब हम बैठे हैं उस स्टेट
क्या
में
दिखता है?
हाँ एग्जैक्टली, how we should feel and what yes. does it reflect so it becomes haan. easy for us.
हाँ जी, मैं अभी आज के उसमें हम उस बात पर भी आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने पूछ लिया है तो हम अभी बताते हैं। देखिए, जब हम दृष्टिकोण हैरी और सोल को मिक्स नहीं कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अपना नाम डाल सकते हैं, हैरी और सोल को मिक्स मत कीजिए। सोल अलग है, हैरी अलग है, अखिला अलग है, सोल अलग है, इसकी मिक्सिंग ना हो इस पर ना है। और जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में हम ऊपर, वो हमारे को वो एनवायरनमेंट मिलता है जागृत होने का, इसीलिए हम परम धाम में योग लगाते हैं, राइट? योग तो यहाँ पर भी लगाते हैं, यहाँ पर भी हम जागृत होके देख सकते हैं, लेकिन हम वहां पर क्योंकि वो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जब हम देखते हैं सारे पॉइंट्स हैं, मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ल्ड है, गॉड का वर्ल्ड है, वहां कुछ चिंता करने का नहीं, सोल जागृत हो जाता है कि ये मेरी वर्ल्ड है। वो जैसे नाइटमेयर से बाहर निकलता है जब सोल कॉन्शियस होता है। आप सुनिए, जब सोल कॉन्शियस होता है तो वो उसको समझ आता है वो परफॉर्मेंस है नीचे, और वो ड्रामा उसको इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट दिखाई देगा, उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, उसको अखिला का पार्ट भी लगेगा, अच्छा वन ऑफ द पार्ट्स बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा फील होगा उसको। वो बिगर मैप देखता है और समझ जाता है उसकी जीवन तो बिल्कुल परे है, अब तक वो उधर जी रहा था जो कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जो कुछ नहीं है। तो वो आपको इंडिपेंडेंस फील होगा, सबसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्टोरी, उन सेकेंड्स और मिनट्स के लिए वो इंडिपेंडेंस फील होगा, वो छोटा लगेगा वर्ल्ड, वो पार्ट भी छोटा लगेगा, और जो कुछ घटित हो रहा है परफॉर्मेंस, ऐसा फील होगा।
सो दैट मींस दिस ब्लिस ऑफ सोल जागृति का, तो हमको वो परम धाम की कांस्टेंट विजुअलाइजेशन में रहना है,
राइट?
टू अचीव दैट हैप्पीनेस,
एग्जैक्टली,
टू क्रिएट।
एक मिनट मैं कट करती हूँ।
हाँ,
क्योंकि जैसे कि इस वर्ल्ड के अंदर हमको देवान का एनवायरनमेंट मिलता है, सोल कॉन्शियस वाला भी देवान ही हो जाएगा, ऐसे ही उधर हमको सोल को कॉन्शियस करने का एक एनवायरनमेंट मिलता है जब उनका हम पूरी तरह विजुअलाइज करते हैं। ठीक है गीता बहन?
या थैंक यू, या यस,
क्लियर है?
तो इट बिकम, इससे हमको ना, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि दिस फैसिलिटेट्स एनहांसिंग ऑफ आवर स्टेट, है ना, सोल वाला। ओके, थैंक यू।
एग्जैक्टली, देखिए कई एनवायरमेंट होता है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, लौकिक पार्टी में, आप कितना सोल कॉन्शियस होके जाएं, तुरंत आपको वो उस माहौल में आप भी देवान में आ जाते हैं.
राइट.
तो ऐसे ही कुछ एनवायरमेंट होता है, वो माया फ्री एनवायरमेंट, वो गॉडली एनवायरमेंट में सोल रियलाइज करता है, अरे मैं कुछ और हूं और मैं अभी तक यहाँ फंसा हुआ हूँ, नीचे क्या क्या कर रहा हूँ नीचे. तो वो जागृत होता है उन सेकेंड्स, उन मिनट्स में आप जीरो बॉन्डेज होते हैं, जीरो बंधायमान, जीरो बंधन. और उन सेकेंड्स मिनट्स में आपका इनर पावर अनलॉक होता है.
ओके.
और वो काम करता है जब आप ड्रामा में भी होते हैं.
राइट. यस. थैंक यू.
गीता बहन, थैंक यू. निर्मला बहन ने सवाल किया है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. देखिए अगर ईगो बेस्ड एफर्ट होगा ना तो आप बात कर सकते हैं निर्मला बहन. गुस्सा हटाने के लिए सोल जागृत होएगा तो गुस्सा नहीं आएगा. बोलिए निर्मला बहन, आप अनम्यूट कर सकते हैं.
मैं फील कर ले.
आप बात करेंगे निर्मला बहन? ओके. क्या आई थिंक उनको नहीं बात करना है, ऐसा समझ लेते हैं. ये गुस्सा भी चला जाएगा जब हम इस सोल जागृति की प्रैक्टिस करेंगे. और जो आप सवाल दी, एक और आया है कि नीचे की दुनिया में हर एक को सोल देखना, वो कैसे होता है? जब हम वहां सोल को जागृत करेंगे, जागृत सोल नीचे भी आएगा तो भी वो दूसरे को सोल देखेगा. वो पावर है जब एक देवान युक्त पुरुषार्थ में और सोल बेस्ड एफर्ट में जमीन आसमान का फर्क है. आप एक बार उस पुरुषार्थ में लग जाएंगे तो आप नीचे भी काफी हद तक सोल देखना स्टार्ट कर देंगे. क्लियर है सभी को? राइट. हम समझते हैं क्लियर है. किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर सकते हैं, हम उस पर फिर आएंगे. तो हम शायद आज थोड़ा सा समय ज्यादा ले लें, अगर किसी को दिक्कत ना हो आप बता सकते हैं. तो जो ऋषि है, ऋषि सत्य को जानता है, ऋषि ट्रुथ को जानता है, वो जानता है यहां से परे की दुनिया कौन है. जब हम ऋषि की बात कर रहे हैं, ऋषि कौन है? सोल है. अकेला कभी ऋषि नहीं बन सकता. ओके. तो ऋषि सोल की बात कर रहे हैं. तो जो सोल जब वो सत्य को जानता है, ऋषि सत्य को जानता है, परे की दुनिया को जानता है, उसमें पावर होती है कि दूसरे को भी फॉल्सहुड, झूठ से बाहर निकाले. लेकिन जो देहभान होता है, देह अभिमानी या देहभान जिसे बोलते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, उसको इस दुनिया के अंदर की चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है. यहाँ का सक्सेस में, प्रमोशन में उसको बहुत अच्छा लगता है. लेकिन ये सक्सेस जो है दुखों के ट्रैप में होता है, जाल में ये ट्रैप करता है और अंततः दुख की ओर लेकर जाता है. तो राज ऋषि का जो हस्तक्षेप होता है वो भगवान के जैसा होता है, इंटरवेंशन. वो किसी भी चीज में इंटरवीन करेगा, अपना हस्तक्षेप करेगा, उसका भगवान के जैसा होता है. और राइट मॉडल जो है राज ऋषि का, हर चीज के लिए एक आइडल होता है ना, ये हमारे आइडल है. राज ऋषि का जो आइडल है, जो राइट मॉडल है, हम कहेंगे वो भगवान खुद है. हैरी कभी भी अशरीरी नहीं बन सकता, अकेला कभी भी अशरीरी नहीं बन सकती, क्योंकि अकेला नाम है शरीर का. हैरी कभी अशरीरी नहीं हो सकता. आप कितना पुरुषार्थ कर लीजिए, हैरी सोल को देख रहा है. अब देखिए, देह अभिमान कभी देही अभिमानी कैसे बनेगा? जो बॉडी है वो बॉडीलेस नहीं बन सकता ना. बॉडी तो बॉडी रहेगा ही रहेगा. कौन बॉडीलेस बनेगा? सोल बॉडीलेस बनेगा. आपको ये पॉइंट समझ आई? आप बता सकते हैं. तो ये हमारा पुरुषार्थ होता है बॉडीलेस बनने का. तो हैरी तो अशरीरी नहीं बन पाएगा. तो ऋषि जो है वो दूसरों के लिए होता है. ऋषि के पास विजडम होती है, वो दूसरों के लिए होता है और दूसरों को स्वर्ग का रास्ता दिखाता है और वहां से बाहर निकालता है. अभी तक की पॉइंट क्लियर है? आप बता सकते हैं. अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो आप बोल सकते हैं. हैरी जो है वो थिएटर के लिए, इस ड्रामा के लिए थिएटर के लिए है, और सोल जो होता है वो सेपरेट होता है, और ऋषि जो होता है उसकी भीतर की जीवन बहुत ही रिच होती है, भीतर की जीवन बहुत ही रिच होती है, पूरी तरह सुख शांति सब कुछ होता है, और वो खुद जैसे इसको अनुभव करता है, वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाता है, दूसरों के लिए लाइट माइट का काम करता है, वो खुद अनुभव कर रहा है, और वो जैसे खुद अनुभव करता है दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो जाता है। तो कई लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि ये इस आयरन एज में इतना कुछ हो रहा है, इस आयरन एज में इसको कैसे देखना है। हम आपको यहाँ पर एक उदाहरण देंगे। देखिए, एक कार है, बहुत ही सुंदर कार है, बहुत ही सुंदर गाड़ी है। आपको आवाज क्लियर आ रही थी अभी तक? हमारा माइक थोड़ा वॉल्यूम कम था, हमने ध्यान नहीं दिया। आप बता सकते हैं अभी क्लियर है? अच्छा, पहले भी क्लियर थी, आई होप क्लियर हुई होगी। तो जो एक कार है, बहुत खूबसूरत कार है, तो वो कार, देखिए कार अच्छी है तो उसकी सीट भी अलग से अच्छी है, उसका बॉनेट भी अलग से अच्छा है, उसका आगे का स्टीयरिंग व्हील भी बहुत अच्छा है, पर लेकिन अगर कोई चींटी उसके ऑयल टैंक के पास बैठी है, वो चींटी ऑयल टैंक के पास बैठी है, तो वो क्या देखेगी? हर जगह ऑयली ऑयल, कितनी गंदी कार है, ऑयली ऑयल है, उसको वो ही नजर आएगा। लेकिन जब हम बड़ा नक्शा देखते हैं, हम केवल कलयुग नहीं देखते, हम बड़ा नक्शा देखते हैं, बड़ा नक्शा देखते हैं, तब हमें समझ आता है ये पूरा ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हम सिर्फ उस ऑयल टैंक के, तेल की टंकी के पास बैठे हैं, तो हमारे को बहुत ही खराब लगेगा, लगेगा बहुत खराब, बड़ा नक्शा देखते हैं। तो जो तकलीफ देने वाली चीज है वो कलयुग की सीन्स नहीं है, ड्रामा की सीन आदि से लेके अंत तक किसी को परेशान नहीं करती है, ये हमारी खुद की पत्थर बुद्धि हमें परेशान करती है, ये हमारे खुद का कंफ्यूजन कि मैं देव हूं, ये दुख लेकर आता है। कोई ड्रामा की सीन किसी को परेशान नहीं करती है, हमारा नजरिया हमें परेशान करता है। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब इस पारस बुद्धि को यूज कर करके इसको बहुत स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, आपका कोई सवाल हो, कुछ हो, आप पूछ सकते हैं। आज हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये पैराग्राफ राज ऋषि के ऊपर जो मुरली बाबा ने बजाई है उस पर है, इसको ध्यान से सुनेंगे। आपको कोई पॉइंट अच्छी लगे तो आप जरूर वो पॉइंट नोट कीजिएगा, ये पॉइंट्स नोट करना बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, और ड्रामा के कोई सीन आए तो अगर वो पॉइंट हमारे को याद आ जाए तो हमारा अहो सौभाग्य, हम वहां पास कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सुनेंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं राज ऋषि के बारे में। तो पहली निशानी, ये लास्ट पैराग्राफ है, ये मुरली जो है 7th अक्टूबर 1975 की है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं 7th अक्टूबर 1975। और बाबा कहते हैं, पहली निशानी पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। ये राजऋषि की परिभाषा बता रहे हैं, सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगमयुगी समझेंगे, सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। क्यों आसुरी आत्माएं? वो रोल्स हैं ऐसे, लेकिन सोल सभी लवली एंड लविंग है। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे, हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा अधिकारी स्वरूप समझकर हर कर्म करेंगे, सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन अनुभव करेंगे, त्रिकाल दर्शीपन के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मा बनाएंगे। आपको क्लियर है अभी तक? तो यानी कि वो फुल बिगर मैप देखता है राज ऋषि जो है, और फिर कर्म करता है। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। कैसे विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा? देखिए, जो जागृत सोल होता है, जागृत सोल का कर्म क्या होता है? जागृत सोल का कर्म होता है उधर एंजॉय करना आसमान में, वही उसका कर्म होता है। वो यहाँ पर जब आता है तो वो सर्विस के लिए आता है, यहाँ पे वो कर्म के लिए नहीं आता है, सर्विस के लिए आता है। तो वो हर सिचुएशन, वो बाबा की सिचुएशन है, बाबा का शरीर है, वो इस तरह से देखता है। तो अगर कोई भी कर्म भोगना ही भी होती है ना, कोई बॉडीली पेन आता है, कोई तकलीफ आती है, वो भी वो इसी नजर से देखता है उसका। या इस दुनिया में कोई जागृत सोल का इस दुनिया में कोई कर्म नहीं होता, जागृत सोल का केवल इस दुनिया में सर्विस होती है। उसका कर्म होता है उस रूहानी उत्सव में भाग लेना, वही उसका श्रेष्ठ कर्म होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा, आप टाइप करके बता सकते हैं अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आई हो। तो बाबा बोलते हैं, हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है ऐसा सदा अनुभव करेंगे, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। यह है निशानियां भी और निशाना भी। निशानियां भी ये हैं और निशाना भी ये है। यानी जो कर्मातीत अवस्था है, निशाना वो है हमारा, लेकिन राज ऋषि बनकर हम उस निशाने तक पहुंचते हैं। तो ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। समझ आया सबको? ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। और फिर बाबा कहते हैं कि एक और छोटा सा पैराग्राफ है, आप टाइप कर सकते हैं, सबको ये बात समझ आए। तो आज बाप दादा राज ऋषियों की सभा देख रहे हैं। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं ये सब राज ऋषि हैं, ट्रेनी एंजल्स। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो, बाबा पूछ रहे हैं। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि। एक तरफ आप राजा हैं अपने मन बुद्धि के, दूसरी तरफ आप ऋषि हैं, त्यागी हैं, बेहद का त्याग, और बेहद का त्याग होने के बाद भी आप सत्य को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, आपके पास हाईएस्ट समझ है, मोस्ट लर्नड, ऊंची, सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, राजा के भी और ऋषि के भी। वह है भाग्य, वह है त्याग, वह है सर्व अधिकारी, और वह फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का प्यारा और वह सबसे न्यारा। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। माना राजा का क्वालिफिकेशन यानी राजा का टाइटल और ऋषि का टाइटल दोनों साथ साथ काम करता है। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य, और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। तो जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग, अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है, दोनों का बैलेंस है। माना ऋषि जो है डैंगलिंग नहीं करता, डैंगलिंग समझते हैं कि इस दुनिया में भी लटका हुआ है, थोड़ा उधर भी लटका हुआ है, बीच में लटक रहा है, डैंगलिंग नहीं करता है, वो एक तरफ रहता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, या कभी या अभी भी ये पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है, यह कब्रिस्तान अनुभव होता है, बाबा कड़ा शब्द यूज करें, कब्रिस्तान अनुभव होता है, सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं या सिर्फ कहने मात्र है? बाबा पूछ रहे हैं यहाँ सब मूर्छित हैं, आपको ऐसा नजर आता है या सिर्फ कहने के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ ऐसा नजर आ रहा है? तो ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्रिस्तान है, जब तक वह अनुभव ना होगा तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। देखिए बाबा कई बार ड्रामा यूज करते हैं, गुड़ियों का खेल है, और कभी ऐसे कड़े शब्द कब्रिस्तान। क्यों ऐसा कड़ा शब्द क्यों यूज करते हैं बाबा, आप बता सकते हैं? जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सृष्टि मणि बहन, हाँ जवाब आया है वैराग्य आ जाए, राइट। नहीं तो हम डैंगल करते रहते हैं, बिल्कुल हेट्रेड हो वैरागी हो, क्योंकि नहीं तो हमारे को आदत है ना, नीचे भी जाते हैं ऊपर भी जाते हैं, ऐसा करते रहते हैं। कब्रिस्तान बोलते हैं ताकि हम एक डिस्टेंस बना के रखें इससे। तो कई बार सॉफ्टर वर्ड्स बाबा सॉफ्ट शब्द यूज करते हैं, ड्रामा है ऐसा है, पर जब देखते हैं कि बच्चे समझ नहीं रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है, तो बाबा फिर ये कड़ा शब्द कब्रिस्तान यूज करते हैं, क्योंकि ऋषि को पता है ये दुनिया कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती है। क्या ऑफर करेगी, क्या है इस दुनिया के पास ऑफर करने के लिए? खुशी नहीं है, सुख नहीं है, चीजों में सार नहीं है, कुछ भी कौड़ी मूल्य नहीं है, जो आज बड़ा वंडरफुल लगता है वही कल दुख देने लगता है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा इसको हमारे को रियलाइज कराना चाहते हैं, यहाँ कुछ है नहीं है, जवाब आ रहे हैं बुद्धि योग हट जाए, राइट। सारे सारे करेक्ट जवाब है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिए हैं बाबा, कड़ा शब्द यूज करते हैं कि हट जाए। और चार लाइन और है इसमें, हम वो भी पढ़ेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाते, इसलिए ही गायन है शमशानी वैराग्य। तो जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा, तो सदाकाल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? तो बाबा बोल रहे हैं कि जो आपने जवाब दिए वही बाबा का भी जवाब है, बिल्कुल बुद्धि की लाइन क्लियर है। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा, ठीक है? तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नजारे दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। कब्रिस्तान एक तरफ दिखाई देगा, दूसरी तरफ परिस्तान। त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति अर्थात नशा और निशाने दोनों ही स्पष्ट होंगे। आप लोगों को क्लियर है? आप कुछ पूछना चाहेंगे? हम बाबा की मुरली को थोड़ा अपने लैंग्वेज में और थोड़ा आगे समझेंगे, अगर अभी फिर भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पारस जो पत्थर बुद्धि होगा उसके लिए ये दुनिया बहुत ही हैवी हो जाती है, पत्थर बुद्धि वाले के लिए दुनिया बहुत ही हैवी होती है, जो क्योंकि वो लॉक्ड है इस दुनिया के अंदर, वो उसके ऊपर सोच ही नहीं सकता है, बिल्कुल लॉक्ड है। लेकिन जो पारस बुद्धि है वो क्या करता है, पारस बुद्धि के लिए यहाँ केवल एक परफॉर्मेंस है, स्क्रिप्टेड है, ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है ना कोई जन्म रहा है। तो बाबा जब आते हैं बाबा फुल लाइट लेकर आते हैं, पूरा प्रकाश, आधा प्रकाश नहीं, पूरा प्रकाश लेकर आते हैं, सत्य का प्रकाश लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं, समझ लेकर आते हैं, और उनकी खुद की स्थिति भी काम करती है, और वो प्रिंस को कॉन्शियस करते हैं, प्रिंस यानी सोल को कॉन्शियस करते हैं। जब ये सोल कॉन्शियस होता है तब उसे समझ आता है उसकी दुनिया यहां से तो परे है, जैसे कोई डरावने सपने से बाहर निकल गया। वो डरावने सपने से बाहर निकल जाता है और डरावने सपने के बाहर देखता है कि उसकी जो शाश्वत सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। उसके पास एक एटर्नल हेवन है, एक फैमिली है, एक परिवार है जहां सुख ही सुख है, वो उसकी दुनिया है। और फिर यही सोल जो भीतर की जो लाइफ है उसकी रिच हो जाती है, तुरंत रियलाइजेशन आने पे रिच हो जाती है भीतर की लाइफ, और यही सोल जो है ये गोल्डन एज में भी कंटिन्यू करता है। ये जिसकी भीतर की इतनी रिच लाइफ है वही सोल गोल्डन एज में भी कंटिन्यू करता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं एक तरफ कब्रिस्तान दिखाई देता है और दूसरी तरफ परिस्तान दिखाई देता है। परिस्तान यानी वो गोल्डन एज नहीं नजर आता, लेकिन आप कब्रिस्तान में ही रहते हुए आप उस भीतर की लाइफ को अनुभव कर सकते हैं जो हम परमधाम में करते हैं, और वही लाइफ गोल्डन एज में कंटिन्यू होती है। भीतर की लाइफ सेम रहती है, केवल बाहर के वैभव होते हैं कि महल होगा सब कुछ होगा, लेकिन भीतर की खुशी में जरा भी फर्क नहीं, क्योंकि वो 100% सुख होता है, तो वहीं से वो कंटिन्यू करती है। आप समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं तो एक तरफ आप कब्रिस्तान में हैं, देख रहे हैं कब्रिस्तान, और दूसरी तरफ आप वो परिस्तान भी महसूस कर रहे हैं। तो आपको ये कब्रिस्तान डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप यहाँ रहकर भी आपको ये जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा कब्रिस्तान, आप बड़े आराम से यहाँ रहते हैं। जैसे कि जो लास्ट एपिसोड चल रहा है आपको पता चलता है चल रहा है, और देखिए कभी भी कोई ड्रामा में भी लास्ट एपिसोड होता है ना तो लोग पहले से ही उठ के जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं, ड्रामा फिनिश होने में अभी 10 मिनट बाकी है, लेकिन लोग रेडी होते हैं, देखने लगते हैं एंट्री एग्जिट कहाँ से है, यहाँ से निकल सकते हैं, कॉर्नर में होके बैठ जाते हैं। आप देखिए ट्रेन जर्नी में भी ऐसा ही होता है, 4 घंटे रह गए हैं, 4 घंटे बहुत होता है, लेकिन तभी से पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग दरवाजे के पास भी आके खड़े हो जाते हैं, अभी 4 घंटा खड़ा रहना है, लेकिन वो रेडी हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे ही हम एक तरफ कब्रिस्तान देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी भीतर की लाइफ वो गोल्डन एज की लाइफ होती है, इतनी खुशी, इतना सुख, परफेक्ट इनर लाइफ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कब्रिस्तान का, और यही सोल कंटिन्यू करता है, रिच लाइफ होती है जो कंटिन्यू करती है गोल्डन एज में। आपको समझ आया बाबा कैसे बाबा बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान भी दिखता है परिस्तान भी दिखता है? क्लियर है सबको? चैट पे टाइप कर सकते हैं। राइट, सबको क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही है अंशु में, मे बी आपको अपने उधर आपको चेक करना होगा शायद। आई थिंक बाकी सब सुन पा रहे हैं, तो प्रॉबेबली आप एक बार लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं। राइट, क्लियर है? तो बाबा इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि दोनों तरफ नजारे हमारे को नजर आते हैं। तो चलिए हम ऋषि के बारे में कुछ और समझते हैं। ऋषि यानी कौन? ये ऋषि जब हम बात करते हैं तो सोल की बात कर रहे हैं, हम अपनी रियल आई की बात कर रहे हैं। जो ऋषि होता है सबसे पहले वो त्यागी होता है। ये देख रहे हैं ये ऋषि का जो मॉडल है उसको डिसइंटरेस्ट होता है, वैराग्य। वैराग्य है उसके पास और विजडम जो है सबसे बड़ा पार्ट है, विजडम यानी समझ, ज्ञान, ज्ञान की समझ, और ये बहुत बड़ा पार्ट है विजडम का। उसके पास जो है प्रेम होता है, मर्सी, रहम दिल होता है, और वो कल्याणकारी होता है, और भगवान को जानने की उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके जैसी अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती है। ऋषि जानता है भगवान को और उसके साथ का रिलेशन उसका स्ट्रांग होता है। तो एक तरफ वो त्यागी है, वैरागी है, लेकिन समझ है उसके पास, प्रेम है, और भगवान को वो अच्छे से जानता है। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे, अगर कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? और जो राजा है, राजा किसका बनेंगे हम? पहले माइंड का राजा, माइंड पे हमको रोल करना है। रावण भी माइंड को यूज करता है, ठीक है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, लेकिन कौन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, कौन उसका विश्लेषण कर रहा है, कौन उसका मतलब निकाल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ये सोल मतलब निकाल रहा है या रावण मतलब निकाल रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट रावण इस्तेमाल करता है मन का 24 घंटा। कैसे पता चलेगा कि रावण इस्तेमाल कर रहा है? कोई दुख नहीं है, मान लीजिए आपको कोई दुख भी नहीं है, आप चुपचाप आराम से बैठे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो रावण इस्तेमाल कर रहा है, आप कैसे मानेंगे कि ये रावण है? क्या निशानी है कि रावण इस्तेमाल कर रहा है? ठीक है, यूजुअली कहते हैं कि रावण इस्तेमाल कर रहा है यानी कोई दुख होगा, किसी चीज में परेशान होगी। हम कह रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई बैड फीलिंग भी नहीं है, आप आराम से बैठे, अनकंफर्टेबल भी नहीं है। कैसे पता चले रावण इस्तेमाल कर रहा है? पता होना चाहिए ना कौन यूज कर रहा है हमारे दिमाग को। कुछ सोच भटक रही है, हम कह रहे हैं सोच नहीं भटक रही है, मल्टीपल थॉट्स भी नहीं है, अननेसेसरी स्टफ सोच रहे हैं? नहीं, आप जरूरी स्टफ ही सोच रहे हैं, खाना बनाना ये वो कर रहे हैं जी। जवाब है राम के साथ नहीं है, राइट, ये भी करेक्ट जवाब है। बाबा को बोले तो रावण आए जी। देखिए कैसे पता चले रावण यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई दुख नहीं, आप आराम से बैठे, शांति से बैठे हैं आप, लेकिन फिर भी रावण यूज कर रहे हैं। कैसे? कि रावण जो है उसके थॉट्स जो है इस दुनिया के अंदर होंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है आप चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, दुख भी ना हो, सूक्ष्म में वो इस दुनिया के कब्रिस्तान के अंदर के थॉट्स हैं, इसके बाहर के नहीं है, उधर के तो नहीं है बिल्कुल भी, उधर के नहीं है तो इधर के ही हैं। कई लोग बोलते हैं ना लौकिक में हमारे को कोई तकलीफ नहीं, आराम से बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांति से, सुख से, कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो रावण के ही थॉट्स हैं। संतुष्टता भी है हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रावण है, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर की संतुष्टता भी हो सकती है, वो भी चेक करिए। कब्रिस्तान के अंदर की संतुष्टता हो सकती है वो। तो आपके पास आपकी फैमिली है, एक महल है, खुशियों से भरा महल है, दुख का नामो निशान नहीं है, इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो लविंग लवली हैं, उसको छोड़कर कौन कब्रिस्तान के बारे में विश्लेषण करेगा, सोचता रहेगा? रावण नहीं कर सकता है, उसको जुनून है इस कब्रिस्तान का, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो अगर आपकी सोच इसके अंदर की है तो ये कब्रिस्तान की चर्निंग चल रही है, मंथन। तो अगर आपका परिवार है, एक अच्छा परिवार है, लौकिक में भी देखिए कौन शमशान के बारे में सोचेगा, अगर आपका पास परिवार है, जॉब है, नहीं सोचेगा ना कोई, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मन उस रूहानी उत्सव में नहीं है तो वो कब्रिस्तान की चर्निंग चल रही है, इसको चेक कीजिए। जरूरी नहीं आप दुखी हो या परेशान हो, हम कह रहे हैं आप खुश बैठे हैं लेकिन फिर भी रावण यूज कर रहा है क्योंकि वो कब्रिस्तान के अंदर का दिमाग है। तो ये आपका चेक करना है। तो जब प्रिंस कॉन्शियस हो जाता है, प्रिंस कॉन्शियस हो जाता है, खेल बदल जाता है बिल्कुल, समझ आता है ये दुनिया हमारी नहीं है। और जब वो कॉन्शियस होता है और वो जैसे अनुभव करता है, ये दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो जाता है, उनका भी इधर आना आसान बना देता है। इसी को लाइट माइट इफेक्ट बोलते हैं। जब आप उधर हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बन जाता है, दूसरे भी बहुत आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोगों को समझ आया? और ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है हाईएस्ट कर्म में, हाईएस्ट कर्म होता है। ऐसा लगेगा कुछ नहीं कर रहे हम, तो खुद ही एंजॉय कर रहे हैं वहां पर, तो हमारी ये एंजॉयमेंट हमारा हाईएस्ट कर्म बना रही है। देखिए कितना वंडरफुल है, आप एंजॉय कर रहे हैं और हाईएस्ट कर्म ऑटोमेटिक बन रहा है। इससे इजी कुछ नहीं है, एंजॉय करते करते कर्म हो रहा है, नहीं तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं हाईएस्ट कर्म करने के लिए लौकिक में, या फिर जिनको ये पूरी तरह अगर ज्ञान नहीं भी हो तो भी। तो यहाँ आप खुद उस सेलेस्टियल सेलिब्रेशन में हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपकी ये सेलिब्रेशन आपका जमा का खाता बनाए जा रही है कि नहीं? वंडरफुल बात। आपको केवल उधर पार्टिसिपेट करना है, आपको पार्टी मनाने के लिए आपको अविनाशी धन प्राप्त हो रहा है कि नहीं? वंडरफुल बात, ये मैजिक ये है। हम यहाँ रुकते हैं, कोई ऐड करना चाहेंगे? क्लियर है सबको? तो देखिए सेलिब्रेशन हम किसको कहते हैं, आप देखिए लौकिक में भी अगर कोई सेलिब्रेशन होती है तो कैसे होती है? लौकिक की सेलिब्रेशन कुछ ऐसे होती है, लौकिक की बात कर रहे हैं, जो भी उत्सव होता है वहां पर एक अपनापन होता है, जिसको अपनत्व बोलते हैं, बिलोंगिंगनेस, अपनापन होता है उस सेलिब्रेशन में। प्यार मेन एलिमेंट है, प्यार सबके प्रति, और ये प्यार केवल ह्यूमन, चलिए यहां तो लौकिक की बात की हमने, तो लेकिन वहां पर भी जो रूहानी सेलिब्रेशन है वहां पर भी प्रेम होता है, बेहद का प्रेम, और वो केवल ह्यूमन बीइंग्स तक सीमित नहीं है, इवन एनिमल सोल्स तक भी है वो प्रेम। हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है, यहाँ सारे के सारे राज ऋषि हैं, सारे राज ऋषि हैं आदर सम्मान के काबिल, सब यहाँ महान हैं। और सुरक्षा एक बहुत बड़ी एलिमेंट होती है, कोई भी आप सेलिब्रेशन में अगर वहां डर हो टेररिस्ट का, आप जाएंगे सेलिब्रेट करने, पार्टी मनाएंगे कि वहां से कोई टेररिस्ट अटैक कर सकता है? नहीं, सुरक्षा। तो वहां पर कंप्लीट भीतर से सुरक्षा है, अमर लोक, कोई टेररिस्ट का डर नहीं है। तो आप वहां बियॉन्ड हार्म, यानी आपको कोई कुछ तकलीफ नहीं है, खुशी और मनोरंजन होता है, और ये सारा जो है सेलिब्रेशन ये वहां भी चलता है। वो हमारा घर है, वहां हमारा अपनापन है, प्रेम है, साइलेंट आदर है, और ये सब कुछ साइलेंस में है, भीतर की ये फीलिंग्स आती है, ये बैकग्राउंड नॉइज, ये डर नहीं रहता है हमेशा, फियर कोई टूट ना जाए, कोई गिर ना जाए, कोई मर ना जाए, ये सब फियर नहीं रहता है, डीप सुरक्षा और हैप्पीनेस। तो ये सब खुशी का ये एक सेलिब्रेशन का बेसिक जो है ये पॉइंट्स होती हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स उस रूहानी सेलिब्रेशन में होती हैं। हमको केवल उस सेलिब्रेशन का भाग बनना है। ठीक है, हम योग की बात करते हैं, तपस्या की बात करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नशा, इंटॉक्सिकेशन। उस घर का नशा होना चाहिए, भगवान का नशा होना चाहिए, उस ग्रेटनेस का नशा। आप देखिए वो इतना वंडरफुल वर्ल्ड है, आप छोटी सी कुछ भी चीज आपके पास कोई वंडरफुल होती है तो आपको उसका नशा रहता है। तो ये तो सब कुछ ऐसा है जहां सब कुछ परफेक्ट है, तो हमारे को उसका नशा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम रोकते हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो हम हमेशा ये ड्रामा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम भिन्न भिन्न शब्द यूज करते हैं, पर हमारा मोटिव यही है कि हम अपने आप को डिस्टेंस करें इससे, इसमें जीना नहीं स्टार्ट करें, तो वो इम्पोर्टेंट है। और ज्यादा समय हमारा ईगो बेस्ड एफर्ट में जाता है, देह अभिमान युक्त पुरुषार्थ। हमारे को चेक करना है सोल जागृत है कि नहीं। किसी को कुछ ऐड करना हो यहाँ पर? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? तो हम यहाँ एक और स्क्रीन शेयर करेंगे। तो ये ज्ञान समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा योग परफेक्ट हो। जैसे हमने कल भी कहा था, ज्ञान को बाबा से अलग नहीं कर सकते। ज्ञान करेक्टली जाएगा तो योग आपका करेक्टली लगेगा। स्क्रीन हम शेयर करेंगे। तो हम कैसे, हमारा लक्ष्य है उस कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो कैसे हम पाते हैं उस अवस्था को, हम अभी देखते हैं। देखिए आपको ये डायग्राम मालूम होगा, हमारे को इस पोजीशन में आना होता है, ये सबको मालूम है, ये ट्रू आई की पोजीशन है। ठीक है, ये कर्मातीत अवस्था है, ये सोल कॉन्शियस अवस्था है, कंप्लीट अवस्था। जब हम इस पोजीशन में आना चाहते हैं, जो बाबा कई बार कहते हैं कि शायद आज के मुरली में भी है, कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ, तो हम जो ये पुरुषार्थ करते हैं उसमें क्या होता है, हम देखेंगे कि अभी जो हमारे माइंड की सेट है, यहाँ पर ये छोटा सा आई है और बाकी सारे जो है यहाँ पर बहुत सारे ईगोज है, देह अभिमान है, कोई छोटा कोई बड़ा, ये बहुत सारे यहाँ पर है। तो जब सोल जागृत होता है, जब सोल जागृत होता है तो ठीक है, हम ये इस पोजीशन में नहीं आ जाते, एक सेकंड का खेल करेक्ट है, एक सेकंड के खेल में हम कर्मातीत नहीं हो जाते। लेकिन जैसे ये सोल जागृत होता है तो इसका दायरा मन के अंदर यहाँ बढ़ना स्टार्ट करता है, ये धीरे धीरे ये सोल कॉन्शियस पोजीशन यहाँ हम लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये जितने भी ये ईगोज हैं ये हटते चले जाते हैं। एक बार कॉन्शियस होते हैं थोड़ा ईगो जाता है, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं फिर ईगो जाता है, तो ऐसे करते करते ये सारे जो है ये आईज हमारे निकल जाते हैं और ये होता है सोल जागृति पे। नहीं तो क्या होता है, जो संस्कार, अगर ईगो बेस्ड पुरुषार्थ है, जो संस्कार आपने हटाया वो संस्कार फिर आ जाता है। हाँ, गुस्सा हट गया पर फिर उसके आने की संभावना होती है, क्योंकि सोल जागृत नहीं हुआ देह अभिमान युक्त पर। देह अभिमान गुस्सा कैसे हटाएगा, वो देह है ना, देह खुद को अशरीरी नहीं बना सकता है, तो ये पूरा ये कवर करके हर बार जब हम करते हैं तो हमारे एक एक आई यहां से निकलते जाते हैं, ब्लैक कलर के आईज जो होते हैं। तो ये इस तरह से होता है। आप कोई पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई सवाल हो तो। आपको क्लियर है? हर बार जब सोल कॉन्शियस होता है तो ये देह अभिमान कटता चला जाता है। आप टाइप कर सकते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? और हम ऑलमोस्ट एंड पर हैं। अब आ रही है, क्लियर है? शेयरिंग करेंगे? किसी का इस तरह का पुरुषार्थ रहा और उसके इफेक्ट आपको मिले हो? चलिए हम आते हैं अपने आप मुरली की बात कर रहे हैं? ओ, ये राज ऋषि का फिगर। आप इस की बात कर रहे हैं, ये वाले आई की या प्रॉबली इसकी बात कर रहे हैं? ये वाला आपको शेयरिंग चाहिए था? किसी और का कोई सवाल हो या कोई पूछना चाहेंगे? तो जब आप अपनी प्रैक्टिस करें, ये जरूर चेक कीजिए कि सोल जागृत है या हैरी। दृष्टिकोण अलग होगा सोल का और हैरी का दृष्टिकोण अलग होगा। इन दोनों को मिक्स मत कीजिए, नहीं मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरी थिएटर के लिए है, उसका जो रोल है वो करेगा, लेकिन सोल अलग है। हम उसकी प्रैक्टिस अभी करेंगे। तो चलिए हम एक प्रैक्टिस पे चलते हैं। हम इस शेयरिंग को हटा देते हैं अभी, आपने अगर नोट किया हो तो। वो हमारा जो मकसद है उस सूर्य को जागृत करने का है। तो सभी अटेंटिवली बैठेंगे, सत्य को देखेंगे, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छा यंत्र है, हम देखते हैं इस दुनिया को जो है जैसी है। ड्रामा है, पपेट थिएटर है, यहाँ पर सोल्स एक्ट कर रही हैं। और ये सोल्स इस ड्रामा का, इस कब्रिस्तान का भाग नहीं है। उनकी दुनिया यहां से परे है। जैसे ये जूम कॉल चल रही है, जैसे अभी यहाँ सारे इस रिट्रीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये रिट्रीट अपनी स्क्रिप्ट अनुसार चलता है और सोल जो है अपने घर पहुंच जाता है। गोल्डन रेड स्काई में सोल अलग है और हैरी अलग है। सोल की वहां फैमिली है, दुनिया है साइलेंस और स्टिलनेस की, यहाँ है ट्रू फैमिली, ट्रू फादर, ट्रू ट्रेजर्स, खजाने, सच्चा सेल्फ, सोल जैसे जागृत हो जाता है, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है, जैसे कि वो सपने से जागा, एक नाइटमेयर से, बहुत खुश है कि वो एक पॉइंट है, अपने आप को किसी रोल के साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करता, हैरी है, अकेला है, ठीक है, एक पार्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिजिकल दुनिया उसके लिए मायने नहीं रखती, जब वो अपने मम्मी पापा के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, ड्रामा वर्ल्ड को, कब्रिस्तान को याद नहीं करती। उसे समझ आता है वो बिल्कुल फ्री है, कोई बंधन नहीं है उसके पास, बियॉन्ड हार्म है, कोई उसको क्षति भी नहीं पहुंचा सकता। वो अकेला के पहले से ही था और बाद में भी एग्जिस्ट करेगा, इमॉर्टल है, अमर है, उसके लिए ये यूनिवर्स बहुत ही पॉजिटिव है, बेनेवोलेंट है, कल्याणकारी है। उसकी दुनिया भगवान के साथ की है, यही उसका कर्म है। जैसे वो यहां एंजॉय करता है, वो हाईएस्ट कर्म, पुण्य का खाता क्रिएट करता है, पूरी तरह से वो जागृत है, वो फिजिकल दुनिया उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही उसका वो रोल। इस रूहानी मौज में वो रहता है, यहाँ अपनापन है, सब एक समान है, कोई कल्चर नहीं भक्ति का, यहाँ कोई भगत नहीं है, भगवान नहीं, यहाँ एक फैमिली है, वर्ल्ड है रिच, यहाँ साइलेंस है, ये साइलेंस बहुत ही रिच है, खोखला नहीं है, इस साइलेंस में हैप्पीनेस है, संतुष्ट, सिक्योरिटी है, सम्मान है, सराहना है, सब कुछ गुप्त साइलेंटली। उसकी दुनिया ही वंडरलैंड है। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं हम सभी का ये सुंदर सत्य है। और जब हम ड्रामा में जाते हैं तो केवल और केवल सर्विस के लिए, दूसरों को जगाने के लिए, क्योंकि हमारा कर्म है ऊपर, जमा का बैंक ऊपर है, नीचे नहीं है। हम याद रखेंगे कि रावण की पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है हमको, राम की पार्टी ज्वाइन कर रही है। इस रूहानी सेलिब्रेशन में रहना है, और ये सेलिब्रेशन में रहना ही हमारा हाईएस्ट कर्म है। एक बार बाबा ने ये भी कहा था कि अगर भक्ति भी करते हैं तो आप उड़ नहीं सकते। भक्ति में रावण का एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर है डिवाइन और रॉयल सेलिब्रेशन, और सबको सब इनवाइटेड है। हम यहाँ पर खत्म करेंगे एक बाप दादा की ड्रिल के साथ में, पर उसके पहले कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते। सभी को क्लियर है? चैट पे टाइप कर सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहे तो। राइट, हम समझते हैं सबको क्लियर हो गया है, तो आज से हम पार्टी मनाने चलेंगे ऊपर, और उस पार्टी में ही रहेंगे। नीचे आने की जरूरत नहीं है, नीचे आएंगे थोड़ा कर्म सेटल करेंगे, लेकिन सर्विस समझ कर आते हैं हम नीचे, और कुछ नहीं। हमारा कर्म नीचे नहीं है। चलिए, सभी को थैंक्स है ज्वाइन करने के लिए, और हम ये बाप दादा की ये ड्रिल देखेंगे, और फिर बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे फिर किसी रिट्रीट। थैंक यू।
एक सेकंड में एकदम देसे त्यारी
Thank you.